जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगन्नाथ हर श्रीवास गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सरसी ललिता विशाख गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम नंदी ऑल ग्लोरीज सिंड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज सिंड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज सिंड डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 4 पृष्ठ संख्या 419 सबने निकाल लिया। बोलिए। तत् क्षेत्रम् यत् च यादृक् च यत् विकारी यतः च यत् स्तः च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम् यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सजयो यत्प्रभावश्च तत्तमासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम् यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सजयो यत्प्रभावश्च तत्तमासेन मे शृणु। तच्छेत्रम् यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सजयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। बोलिए। हरि बोल। तत् वह क्षेत्रम कर्म क्षेत्र यत् जो भी यादृक् जैसा है च भी यत जो विकारी परिवर्तन यतः जिससे च भी यत जो सह वह च भी यह जो यत जो प्रभावः प्रभाव च भी तत् उस समासेन संक्षेप में मैं मुझसे श्रृणु समझो सुनो अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है यह किस प्रकार बना है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं यह कहाँ से उत्पन्न होता है इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए
ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायां चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकातां श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदान श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाचारिणे
कोई बात नहीं समझेंगे भगवान कह रहे हैं तत्क्षेत्रम यादृच्छा, वो क्षेत्र जो भी है और जैसा है, यद विकारी जिस प्रकार के परिवर्तन वाला है, यतस्य यत और कहां से कैसा हुआ हा? और सत्य प्रभाव से, और जो क्षेत्रज्ञ है वो जैसा है और जिस प्रभाव वाला है, तत्समा से निष्णु उसको संक्षेप से मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं इस विषय को संक्षेप से मेरे द्वारा सुनो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्री प्रभुपाद की भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे, ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ और तात्पर्य के अंतिम वाक्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। क्या इस क्षेत्र के अंदर दो क्षेत्रज्ञ हैं, इस शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये गलती नहीं करना चाहिए कभी। क्या कि परमात्मा को जीवात्मा मान लिया जाए, जब दो अलग अलग हैं जीवात्मा और परमात्मा इसी शरीर में हैं, तो दोनों को एक नहीं मानना चाहिए। अगर दोनों को एक मान लिया तो बहुत बड़ी गलती होगी। उसी प्रकार से जैसे सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एक समान आप बताएं, सक्षम पुरुष का मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति सब प्रकार से उसके अंदर क्षमता है, सब प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, एक दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल भोंदू है, बिल्कुल बेवकूफ है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता है ना, अक्षम। या अक्षम उसको भी कह सकते हैं जिसके हाथ टूटे हैं, ये जिसकी आंखें फूटी हों, या जिसके दोनों पैर टूटे हों, है ना। तो उसमें और सक्षम पुरुष में बड़ा अंतर है कि नहीं। जिसकी आंखें दोनों आंखें फूटी हैं, है ना, दिमाग भी एकदम खराब है, काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जिसके पास सब प्रकार की क्षमता हो, है ना, और आप एक कहो कि दोनों एक हैं, तो कितना गलत है, बहुत गलत है। तो जीव और परमात्मा में बड़ा अंतर है। जीव जो है इस शरीर के अंदर बंधा हुआ है, जीव को शरीर से बांधा गया है, और इस प्रकार से जीव जो है इस शरीर के अंदर कष्ट भोग रहा है, शरीर के कारण उसको जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट भोगना पड़ रहा है। और जो परमात्मा है वो सर्वनियंता है, पूरी सृष्टि का पालन करने वाले हैं। तो कितना अंतर है जीव और परमात्मा, कितना अंतर है। अगर दोनों को एक बता दिया जाए तो कितना कितना बड़ा ये जो है अपराध है, ये सोचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा सावधान करते हैं कि इस प्रकार की गलती ना करो, ना करो, है ना। तो यही भगवद गीता यथा रूप है, जिसमें कि भगवान के संदेश को किसी प्रकार बदला नहीं जा रहा है। और प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि सावधान, इसमें बड़ा खतरा है, भगवान के संदेश को ज्यों का त्यों समझना चाहिए। अगर शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं तो दो आत्माओं को एक आत्मा नहीं बताना है ना। जीव और परमात्मा में बहुत बहुत अंतर है, है ना, जीव उसी प्रकार से जैसे जिसकी आंखें फूटी हैं, हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं और दिमाग खराब है। ए बच्चे, जिनके बच्चे हैं, हाँ, और जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है ना, पूरी सृष्टि के नियंता है, सबका पालन करने वाले हैं, है ना, बहुत बहुत अंतर है ना। तो अब इस श्लोक में भगवान संक्षेप से कहते हैं अर्जुन से कि तुम श्रवण करो, क्या श्रवण करो, क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर को, है ना। तो अब हम श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है उससे पढ़ के सुनाएंगे। प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को, असुर बालक जो प्रहलाद महाराज के सहपाठी हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं शरीर और जीवात्मा में क्या अंतर है, है? तो मैं इसको थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। ये सातवां स्कंध है और सातवां अध्याय है। इस श्लोक संख्या 18 में प्रहलाद जी उन बच्चों को समझा रहे हैं, क्या कहते हैं, जन्माद्यासन में भावा दृष्टा देहस्य नात्मना फलाना में वृक्षस्य काले नेश्वरे मूर्तिना। प्रहलाद जी तुलना कर रहे हैं एक वृक्ष से, एक वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं ना? जिस प्रकार वृक्ष के फलों और फूलों में काल क्रम से 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आप किसी फल में देखो या किसी फूल में देखो, 6 प्रकार के परिवर्तन आप देखोगे, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के पास तो समय नहीं है अर्जुन को विस्तार से समझाने का, क्योंकि तो भगवद गीता भगवान ने जल्दी जल्दी बोली है अर्जुन को, है आप जानते क्यों, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है, इसलिए भगवान कहते हैं कि संक्षेप से मैं बताऊंगा। ये प्रहलाद जी बैठे हैं फुर्सत में, और असुर बालक जो हैं फुर्सत से सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समय था खेलने का, और खेलना बंद कराया प्रहलाद जी ने और कहा कि सुनो, तो वो सुनने बैठे, तो फुर्सत से वो सुना रहे हैं और फुर्सत से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वही जो विषय है वो विस्तार से वर्णन हुआ है। तो प्रहलाद जी विस्तार से समझा रहे हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो शरीर की तुलना कर रहे हैं किसी वृक्ष के फल से या फूल से। बहुत अच्छा जो है ना, एक व्यवहारिक उदाहरण प्रहलाद जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चाहे कोई फल लो या किसी भी फूल को लो, वो क्या है, पहला तो होता है जन्म होना, पहला क्या है जन्म होना, यानी आकार बनता है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब कुछ समय तक बना रहता है ना। और फिर तीसरा क्या है, वृद्धि, मतलब वैसे जन्म का वृद्धि होना चाहिए, जन्म के बाद बढ़ता है, जन्म का मतलब आकार होता है और फिर बढ़ता है, वृद्धि होती है, इसके बाद फिर अस्तित्व होता है, मतलब कुछ समय तक ज्यों का त्यों रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है ना। एक ये भी अवस्था होती है, कोई भी फल हो या कोई भी फूल हो, पहले तो आकार बनता है उसका, जिसको जन्म कहते हैं, इसके बाद फिर वो बड़ा होने लगता है ना, तो ये दूसरा परिवर्तन। फिर तीसरा परिवर्तन, बड़ा होना बंद हो जाता है, तो ज्यों का त्यों बना रहता है, ये तीसरा परिवर्तन। और फिर चौथा परिवर्तन क्या है, रूपांतर, रूपांतर मतलब उससे और दूसरे फल या फूल पैदा होते हैं। और फिर पांचवा क्या है, क्षय, मतलब क्षीण होने लगता है ना, क्षय उसको बोलते हैं। और अंत क्या है, मृत्यु, कि 6 प्रकार के परिवर्तन हैं। उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। भौतिक शरीर को आप एक फल से या फूल से उपमा दे सकते हो, जैसे फूल है बड़ा होता है और सुंदर होता है, देखो जवानी में सुंदरता बढ़ जाती है हर व्यक्ति की, और फिर जैसे फूल की सुंदरता समाप्त होती है ना, मुरझाने लगता है फूल, उसी प्रकार से जवानी के बाद फिर मुरझावट मुरझाना शुरू होता है शरीर का भी, और अंत में फूल या फल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर भी नष्ट हो जाता है ना। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आत्मा और भौतिक शरीर का अंतर समझाने के लिए ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता में 2:20 कहा गया है, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, न जायते मृते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है न मृत्यु, नहीं एक बार जन्म लेने के बाद अस्तित्व में आने के बाद उसका विनाश होता है, यह जन्म है शाश्वत है सदा विद्यमान रहने वाला ना मरने वाला और सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आत्मा क्षय और परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय और परिवर्तन होते रहते हैं। क्या मतलब, आत्मा में क्षय और परिवर्तन नहीं होते हैं। क्षय का मतलब क्षीण होना घटना, और परिवर्तन का मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरे आत्मा का उत्पन्न होना। तो एक आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा नहीं हो सकती, जबकि शरीर से होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं स्पष्ट है। वृक्ष का भी आप उदाहरण ले सकते हो, वृक्ष भी पहले जन्म होता है, फिर बढ़ने लगता है, और फिर कुछ समय तक ज्यों का त्यों रहता है, फिर उससे और दूसरे वृक्ष पैदा होते हैं, और फिर क्षीण होने लगता है, और फिर अंत में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वृक्ष अनेक अनेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ इसके फूलों तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायनविदों का मूर्खता पूर्ण सिद्धांत कि जीवन रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र और रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि कभी कभी मैथुन के बाद रज तथा वीर के मिलने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। अब क्यों नहीं होता गर्भधारण, अगर आत्मा नहीं आएगी तो स्त्री पुरुष मिलते हैं लेकिन बच्चा नहीं बनता। तो सब परिस्थितियां जन्म की सब परिस्थितियां वैसी हैं ज्यों की त्यों, लेकिन चूंकि आत्मा नहीं आई इसलिए वो शरीर बनता नहीं है ना। तो ये इतना सरल सिद्धांत है कि आत्मा जो है ना जब तक नहीं आएगी, पुरुष के जो है ना वीर में जब तक आत्मा नहीं आती है तब तक वो वीर जो है ना बिना आत्मा के जब रस से मिलता है तो बच्चा नहीं होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भ धारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, उसका अस्तित्व होता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार लगते हैं किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। उसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वही रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बड़े सुंदर उपमा दे रहे हैं, आत्मा की तुलना कर रहे हैं वृक्ष से और शरीर की तुलना कर रहे हैं फल फूलों से। ये भी बहुत अच्छा है कि वृक्ष में जो है मतलब फल हैं वो पैदा होते हैं और फिर बढ़ते हैं, फिर उस काल तक स्थिर रहते हैं, फिर घटते हैं और फिर नष्ट जाते हैं। ऐसे कितने फल पैदा होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, और वृक्ष ज्यों का त्यों खड़ा रहता है कि नहीं। हालांकि वृक्ष में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे फल और फूल जो में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उस प्रकार से तो परिवर्तन नहीं होता है वृक्ष में। तो कुछ हद तक इसकी तुलना आत्मा से की जा सकती है। पूरी पूरी तुलना तो नहीं लागू होती, क्योंकि वृक्ष में भी आखिर परिवर्तन तो होता ही है कि नहीं, और आखिरकार तो वृक्ष भी नष्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसकी तुलना आत्मा से की जा सकती है कि वृक्ष के जीवन काल में कितने कितने फल पैदा हुए और नष्ट हुए, और वृक्ष ज्यों का त्यों रहता है। इस तरह से बहुत अच्छा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं जिनमें छह परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वही रहता है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा गृहित शरीर बदलते रहते हैं। अब प्रभुपाद क्या बताते हैं आगे, आत्मा दो प्रकार के हैं, एक तो परमात्मा यानी भगवान और दूसरा जीवात्मा यानी जीव। जिस तरह जीवात्मा में विविध शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में मध्वाचार्य कहते हैं, सद्विकारा शरीरस्य विष्णु संगतस्य च तद्धियम शरीरम चा ज्ञात्वा तन्ममताम तिजे। क्योंकि शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है, अतएव आत्मा शरीर पर आश्रित नहीं है बल्कि शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। मतलब क्या है कि जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र आपने धारण किए हैं, है ना, तो ये जो वस्त्र हैं ये आश्रित हैं शरीर के, है कि नहीं। ये जो वस्त्र हैं ये शरीर के आश्रित हैं, शरीर वस्त्रों पर आश्रित नहीं है। उसी प्रकार से शरीर भी आत्मा का वस्त्र है ना, तो आत्मा शरीर पर आश्रित नहीं है बल्कि शरीर आत्मा पर आश्रित है। जैसे ही शरीर जैसे आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर रूपी वस्त्र पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि वस्त्र आप उतार देते हैं तो फिर वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, वस्त्र कुछ नहीं करेगा। जब तक वस्त्र आप पहने हुए हैं तब तक वस्त्र काम कर रहा है, है कि नहीं। तो वस्त्र में जो गति है वो शरीर के कारण है, उसी प्रकार शरीर में जो गति है आत्मा के कारण है, कि शरीर भी आत्मा का वस्त्र है। शरीर को स्थायी रूप या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं है। अंतवंत में यहाँ नित्यस्योक्ता शरीर नहा, ये भगवद गीता का 2:18 वचन है। भौतिक शरीर अंतवंत नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। नित्य सुक्ता शरीर नहा, भगवान विष्णु और उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत हैं। नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम, भगवान विष्णु मुख्य जीव हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश हैं। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर क्षुद्र चीटी तक नाशवान है, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुण में एक से होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में अधिक व्याख्या हुई है। अब अगला श्लोक है, प्रहलाद जी कहते हैं ना? बड़ा अच्छा है। अगले श्लोक में आत्मा के 12 लक्षण बताते हैं प्रहलाद जी। आत्मा नित्योग्य शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिय सुदृंग हेतु व्यापको संयनामृत एत द्वादशीर विद्वान आत्मनो लक्षण परे अहम अमित संभाव देहाद मोहजम तेज। अनुवाद है, आत्मा परमेश्वर का या जीवों का सूचक है। आत्मा दोनों, आत्मा का अर्थ है दोनों है, परमात्मा भी और जीवात्मा दोनों है। ये दोनों ही आध्यात्मिक हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त हैं और क्षय से रहित हैं, भौतिक कलमश से भी मुक्त हैं। ये दोनों व्यस्ति हैं, व्यस्ति मतलब व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं। आत्मा भी और परमात्मा दोनों ही पर्सनालिटी हैं, व्यक्ति हैं, निर्विशेष नहीं है, व्यक्तिगत है, दोनों व्यक्ति हैं। और ये बाहरी शरीर की ज्ञाता हैं, प्रत्येक वस्तु के आश्रय आधार हैं, इनमें भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये आत्म प्रकाशित हैं, ये समस्त कारणों के कारण हैं और सर्व जाति हैं। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव सदा अनाकृष्ट रहते हैं। इन दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वो सोचता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूं और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। अब इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवद्गीता में 15:7 भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं क्या, ममेवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन है, सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः सारे जीव गुणात्मक रूप से भगवान के ही समान हैं। जो समस्त जीवों के नायक हैं, भगवान क्या है, सब जीवों के नायक है या श्रेष्ठ है। वेदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, भगवान प्रधान जीव है, अधीन जीवों के नायक हैं, क्योंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश हैं, अतः उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं, जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं, जैसे समुद्र की एक बूंद और विशाल समुद्र एक जैसी होती है, इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर भगवान को समझ सकता है, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि गोदाम में 100 टन चावल रखा हुआ है या 1000 टन चावल रखा हुआ है ना, तो आपको जो ना अगर जानना है कि किस प्रकार का चावल है तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी बान की आप निकाल करके देखते हो कि भाई ये है, अच्छा इस प्रकार का चावल है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान को समझने के लिए आपको भगवान का एक नमूना देखना चाहिए, और वो नमूना क्या है, जीवात्मा, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में रूप मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो एकत्र होता है किंतु ईश्वर महान है, जबकि जीव अत्यंत क्षुद्र है, अणुरणीयान महतो महीयान कठोर सद 1-2-20, सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं, परमाणु से भी छोटे हैं, परमाणु भी इतना छोटा नहीं हो सकता जितना छोटा जीव है, है? जीव कितना छोटा है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, परमाणु भी इतना छोटा नहीं हो सकता है, परमाणु से भी छोटा है जीव, किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है। महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं, किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से भी छोटे हैं, बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के तुल्य, फिर भी जीव तथा भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। निस्संदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते हैं। तो प्रभु जी क्या कहते हैं, आत्मा के कारण शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड की आत्मा है, तो ये ब्रह्मांड भी जो है इसी प्रकार से परिवर्तनशील है। आगे एक आसद महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवद गीता में 9:4 बताया गया है, मत्सानी सर्वभूतानी हम तेजोवसिता, प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा जीव सम्मिलित है, आत्मा के पद पर स्थित है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, किंतु कोई ये ना सोचे कि भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है, ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया सचेत हैं। जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत हैं, इसी प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत हैं। इसकी पुष्टि वेदों से होती है, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चांद परिक्षम विज्ञातारम अधिकेन विजानीयात् एकमेवाद्वितीयम् आत्मज्योति सम्राट इहो वाचः सैमान लोकान असृजत सत्यम ज्ञानम अनंतम असंगोयम पुरुषा
पूर्ण से पूर्ण माला है, पूर्णमेवा वशिष्ठे। ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यक्ति हैं, एक महान है और दूसरा क्षुद्र है, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण है। शरीर से सीमित किंतु विश्व की दृष्टि से असीम। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुण में भगवान के समान हैं, किंतु मात्रा में कभी भी उनके तुल्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश ये सोचने लगते हैं कि मात्रा में भी वे उन्हीं के तुल्य हैं। उनकी बुद्धि अभिशुद्ध बुद्धिया अर्थात असंस्कृत या कलमत्कृत बुद्धि चलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारण को समझने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा, इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है या जान लेता है कि ईश्वर महान है, विभु और आत्मा लघु अणु है, तो वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि वह भौतिक शरीर है तो शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वह अंधकार में रहता है। ये अहम मम जनसमूहोयम अहम अमेति, ये मोह है। उसे अपनी भ्रांत धारणा का त्याग कर हर एक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रभात जी क्या कहते हैं, स्वर्णम यथा ग्रावसो हेमकार क्षेत्र सुजोग क्षेत्र सुतात्मयोग अध्यात्म ब्रह्म गति लभेत। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक निपुण भूविज्ञानी, भूविज्ञानी समझते हैं, जो पृथ्वी के अंदर पता लगाता है कि क्या है, समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है, और वो उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। जो भूविज्ञानी है वो जमीन के अंदर से सोना जो कि अशुद्ध अवस्था में है उसको वो शुद्ध करता है, निकालता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति ये समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार एक अनाड़ी ये नहीं समझ पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया वो ये नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। बहुत अच्छा है, यहाँ प्रभा जी क्या समझा रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर सोना, मिट्टी के अंदर सोना अगर है तो वो थोड़ा सा ही सोना होता है लेकिन वो बहुत कीमती होता है, जबकि मिट्टी बहुत ज्यादा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार से शरीर इतना बड़ा है, उसके अंदर आत्मा बहुत छोटी सी है, लेकिन उसकी तुलना की सोने से। और मनुष्य जो है ना, मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है कि वो जो है ना खोजे उसको, वो जो थोड़ा सा सोना है इतनी बड़ी मिट्टी के ढेर में, ये शरीर क्या है मिट्टी के ढेर जैसा है, और वो जो आत्मा है वो थोड़ा सा जो है ना चाहे हो आकार में लेकिन वो सोने के समान है ना। जो कुशल भूविज्ञानी है वो सोने को निकाल लेता है और शुद्ध कर लेता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति ये समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहता है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार एक अनाड़ी ये नहीं समझ पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया वो ये नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है ना। हाँ, तो जब तक आत्मा की खोज नहीं करता कोई व्यक्ति तब तक मनुष्य के जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती है। जैसे भगवान सर्वदेव कहते हैं पराभवस्ता वत बोध जातो यावन जिज्ञासा आत्म तत्व, जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा ना करे, खोज ना करे, तब तक जीवन में असफलता प्राप्त होती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में अगर सोना गड़ा है और वो नहीं निकालता है तो दरिद्र रहता है हमेशा, लेकिन वो थोड़ा सा सोना है लेकिन अगर वो निकाल ले अपने जमीन से तो जीवन भर के लिए संपन्न हो जाए, है ना। इसी प्रकार से शरीर के अंदर अगर कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं खोजता है तो वो फिर कष्ट भोगता रहता है। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी अच्छा उदाहरण दिया गया है। मूर्ख लोग जिनमें तथाकथित ज्ञानी, दार्शनिक और विज्ञानी सम्मिलित हैं, शरीर के भीतर आत्मा को नहीं समझ सकते क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत्। आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित ना हुआ हो वह पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाता वो आत्मा तथा पदार्थ के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। यहाँ पर कहा गया है योग्य सत अभिज्ञा इससे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से रहता है वो समझ सकता है कि शरीर के भीतर आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु जिसमें पशु बुद्धि रहती है और आध्यात्मिक संस्कृति रहती ही नहीं वो इसे नहीं समझ सकता। एक दक्ष खनिज वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री ये समझ सकता है कि सोना कहाँ कहाँ है और उसे निकालने के लिए वह धन लगा सकता है एवं खनिज में से रासायनिक विधि से सोना निकाल लेता है। उसी तरह दक्ष अध्यात्मविद सत्ववेत्ता भी समझ सकता है कि पदार्थ के भीतर आत्मा कहाँ है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता वह सोना तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। कितना भी पता नहीं चलता अगर कोई बिल्कुल जानकारी नहीं है सोने सोना की कि सोना क्या चीज है तो उसे कोई व्यक्ति अगर कुछ चमकीला पत्थर दे दे कह दे यही सोना है तो वो उसे कोई सोना मान लेगा, है कि नहीं। इसी प्रकार जिन मूर्खों तथा धूर्तों ने दक्ष गुरु से ये नहीं सीखा कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने के लिए उस मनुष्य को योग प्रणाली में या अंततः भक्ति योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में 18:55 कहा गया है भक्तिया माम अभिजानाती। जब तक कोई भक्ति योग के शरण नहीं ग्रहण करता तब तक वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतः भगवद गीता में 2:13 निम्नलिखित शिक्षा दी गई है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक कोई बता सकता है क्या है? दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक देह अस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जना तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र रमयति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाता है उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार पहला उपदेश है कि शरीर के भीतर आत्मा रहता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान का यह शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा उसे समझने की परवाह नहीं करता वह देहात्म बुद्धि में पार्श्विक जीवन की विचारधारा में रहा आता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है कैसे यत्म बुद्धि कुल पे त्रिधातु के मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भगवद गीता के उपदेशों को समझना चाहिए क्योंकि यही एक साधन है जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस मिथ्या भ्रामक ज्ञान को त्याग देता है जिसके कारण वो सोचता है मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं अहम अमेटी कुकरों किसी इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये परंपरा संबंधित है। इस प्रकार जीवन की समस्याएं छोड़ करके मनुष्य परम धाम वापस जा सकता है। तो इतना हमने प्रहलाद महाराज की शिक्षा से पढ़ा और प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ प्रश्न करें या मैं प्रश्न करूं। कोई प्रश्न है किसी का? आपका प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि आत्मा का साइज क्या एक ही है चाहे चीटी या हाथी। हाँ, इसीलिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए बहुत बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए तो इसको सबसे बड़ा आश्चर्य कहा गया है कि आत्मा का साइज वही है और शरीर चाहे चीटी का हो चाहे हाथी का हो, है ना। ये बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा उतना ही छोटा है ना। जैसे कि एक बल्ब है ना, तो अब इतना बड़ा कमरा है तो यहाँ इस कमरे में कितने बल्ब जल रहे हैं तब कहीं रोशनी हो रही है कि नहीं। एक छोटा कमरा अगर होता कितनी रोशनी के लिए एक बल्ब काफी है कि नहीं। जितनी रोशनी अभी यहाँ हो रही है तो उनमें से एक बल्ब भी जो है ना कितनी रोशनी पैदा करता अगर कमरा छोटा होता है कि नहीं। क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है तो इतने बल्ब लगाए हैं उतनी रोशनी पैदा करने के लिए है कि नहीं, या फिर ज्यादा पावर के बल्ब लगाना पड़ता है। लेकिन आत्मा वही है, उसी प्रकार की आत्मा सब जीवों की है, लेकिन शरीर देखो चीते का होता है हाथी का शरीर होता है ना, तो पूरे शरीर को चेतन करता है एक जीव, जबकि जीव उतना ही बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन जीव जब आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करता है तो फिर उसका अलग अलग साइज होता है ना। कोई जीव भगवान के धाम में जो है पशु हो सकता है, पक्षी बन सकता है या मनुष्य बन सकता है। तो जो भी हो, जो भी शरीर प्राप्त हो, ये आध्यात्मिक होता है वो शरीर। आप समझे, इस भौतिक जगत में वो जीव बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, आध्यात्मिक जगत में वही जीव अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो वो बालक भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, और छोटा वृक्ष हो सकता है, बड़ा वृक्ष हो सकता है, छोटा पशु हो सकता है, बड़ा पशु हो सकता है, छोटा पक्षी हो सकता है, बड़ा पक्षी हो सकता है। लेकिन ये नहीं समझना कि वो पशु पक्षी और वृक्ष के रूप में जो जीव हैं भगवान के धाम में उनमें किसी प्रकार का अज्ञान होता है। भगवान के धाम में जितने पशु हैं पक्षी हैं वृक्ष हैं ये सब पूर्ण चेतन है, जबकि यहाँ इस भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का तो मैं प्रश्न करूं ना। प्रहलाद जी ने जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसमें प्रहलाद जी ने एक तुलना की है। बड़ा व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए प्रहलाद जी ने एक तुलना की है। वो क्या तुलना है? वृक्ष में फल और फूल है ना। तो पहली बात है कि 6 प्रकार के परिवर्तन है शरीर में, है वो कौन कौन से हैं कौन बताएगा? पहला परिवर्तन क्या है शरीर में? जन्म लेना। पहला कि वो पहले उसका आकार नहीं था, एक आकार बन गया, एक निर्मित हो गया उसका शरीर। तो पहला ये परिवर्तन है जन्म। फिर दूसरा परिवर्तन क्या है? वृद्धि, कि बड़ा होता है, चाहे फूल हो चाहे फल हो बड़ा होता है, वृद्धि। और फिर तीसरा परिवर्तन क्या है? अस्तित्व, बढ़ना बंद हो जाता है, अब एक से रेखा रहता है, ये तीसरा परिवर्तन है। और चौथा परिवर्तन है प्रजनन। प्रजनन मतलब एक से दूसरे शरीर पैदा हो रहे हैं, प्रजनन है? कितना हो गया? 4। पांचवा क्या है? 6। क्षीण होने लगता है शरीर। और छठवा क्या है? विनाश, अंत में नष्ट हो जाता है ये शरीर। तो फूलों का और फलों का उदाहरण लेकर के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर शरीर की तुलना की है फल या फूल से, और आत्मा की तुलना किससे की है? वृक्ष से। वृक्ष है वहीं का वहीं खड़ा होता है। लेकिन ये तुलना पूरी तरह से लागू नहीं होती। क्यों? हाँ, क्योंकि वृक्ष भी में भी तो 6 प्रकार के परिवर्तन है, चाहे वो फूल फलों की तुलना में धीरे धीरे हूँ, वृक्ष में भी होते हैं आखिरकार। आखिर वृक्ष कोई भी वृक्ष हो, 100 साल, 200 साल, 500 साल के बाद समाप्त हो जाता है, तो पूरी तरह से लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ लागू होता है ये। अच्छा, और क्या तुलना की प्रहलाद महाराज ने? के प्रहलाद जी ने 12 लक्षण बतलाए हैं, आत्मा के 12 लक्षण बतलाए हैं प्रहलाद जी ने। पहला क्या है कि जो आत्मा है ये कैसा है? नित्य है। नित्य है मतलब जन्म और मृत्यु से रहित है। और दूसरा आत्मा का लक्षण क्या है? अव्यय है, मतलब क्षीण होने की संभावना से रहे थे, इसमें कोई कमी नहीं आती कभी भी। जन्म मरण नहीं है वो तो दूसरी बात है, लेकिन कमी भी कभी नहीं आती आत्मा में। अब यह और तीसरा लक्षण क्या है? शुद्ध है, भौतिक कलमश से रहे थे, क्योंकि भगवान कांस है इसलिए शुद्ध है, भौतिक कलमश उसमें नहीं है। आसक्ति या विरक्ति का जो भाव है आत्मा में नहीं है, किसी भी भौतिक संसार में आसक्ति और विरक्ति से रहित है आत्मा। तो ये तीसरा लक्षण है आत्मा का। और चौथा क्या है? एक आह, यानी अकेला है, कि जो आत्मा है अकेला ही अपने कर्म से जन्म लेता है, अकेला ही अपने कर्म को लेकर के जाता है, अकेला है। और फिर क्षेत्रज्ञ है, यानी जानने वाला है, भौतिक शरीर से पृथक है और भौतिक शरीर को जानने वाला है। और इसके बाद क्या है? आश्रय, यानी मूल आधार है। आत्मा के बिना ये भौतिक शरीर टिक नहीं सकता बिल्कुल, आत्मा निकल गई तो भौतिक शरीर बिल्कुल नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, तो ये भी आत्मा का एक लक्षण है। अभिक्रिया का मतलब है शरीर की तरह परिवर्तन आत्मा में नहीं होते। और फिर सदृक है, यानी आत्म प्रकाशित है, अपने आप से ही प्रकाशित है आत्मा। आत्मा को किसी और चीज से नहीं समझना पड़ता है, आत्मा अपने से ही अपने को समझता है ना। ये है सदृश। फिर हेतु समस्त कारणों के कारण है, समस्त कारणों का कारण यह है आत्मा है। और व्यापक, चेतना के रूप में सारे शरीर में फैला हुआ है, व्यापक है आत्मा, है ना। अब आत्मा कैसे व्यापक है? आत्मा तो बहुत छोटा है और शरीर के हृदय में स्थित है, फिर व्यापक कैसे है? हाँ, चेतना के रूप में पूरे शरीर में फैला हुआ है आत्मा, व्यापक। फिर असंगी है, असंगी मतलब शरीर पर आश्रित नहीं रहता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, इस शरीर में बना नहीं है आत्मा, असंगी है। फिर अनावृत है, भौतिक कलमों से आवृत नहीं है आत्मा में, भौतिक कलमों का आवरण नहीं होता। तो ये 12 जो है ना लक्षण आत्मा के हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 12 लक्षणों को जानता है आत्मा के, तो वो वास्तव में विद्वान है और वो जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करता है कि मैं ये शरीर हूं, ये भावना उसके अंदर नहीं रहती है। तो प्रहलाद जी असुर बालकों को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन को समझना चाह रहे हो तो इस प्रकार से समझो। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं पड़ा क्या करें? आत्मा का तो साइज बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है। आत्मा का साइज तो बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, लेकिन फिर वो कौन है जिसका साइज अंगूठे के पोर के बराबर है? परमात्मा, परमात्मा का। हाँ, तो ऐसा प्रश्न है कि अगर परमात्मा का साइज जो है अंगूठे के पोर के बराबर है, तो भाई हमने तो मान लिया कि भाई इतने बड़े परमात्मा हमारे हृदय में है, हो सकते हैं। लेकिन किसी के शरीर में इतने बड़े परमात्मा कैसे होंगे? हाँ, किसी के शरीर के हिसाब से जो अंगूठा है उसका, उस हिसाब से परमात्मा है। आप सुन, तो परमात्मा हाथी में भी है और वृक्ष के अंदर भी है। शरीर के हिसाब से जितना अंगूठा होता है उस साइज में। लेकिन और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, और प्रभुपाद जी तुलना करते हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा और परमात्मा है इनको समान समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो क्या उदाहरण दिया प्रभुपाद ने? हाँ, सक्षम और पुरुष, सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को अगर समान समझ लो तो बहुत अपराध है। सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष का मतलब क्या हुआ? हाँ, अक्षम है जो विकलांग है, यानी दिमाग काम नहीं कर रहा है, आंखें फूटी हो, हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं उसमें, और सक्षम पुरुष में जिसका दिमाग अच्छा है और हाथ पैर सब अच्छे शरीर के हिस्से है ना, वो हजारों काम करता है, अक्षम पुरुष कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो कितना अंतर है। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में है ना, इसको हमने और समझाया था अंतर, जीवात्मा परमात्मा में अंतर क्या है। जीवात्मा शरीर में, जीवात्मा किसी कैसी है और परमात्मा किसी कैसी है, इसमें क्या अंतर है, कौन बताएगा? नहीं, वो तो अंतर है, उस प्रकार से तो अंतर बताया है, लेकिन स्थिति शरीर में जीवात्मा किसी कैसी है, शरीर में जीवात्मा किसी कैसी है और परमात्मा किसी कैसी है? जीवात्मा बंधा हुआ है, जीवात्मा शरीर में बंधन ग्रस्त है, और परमात्मा कैसे हैं? स्वतंत्र है, केवल स्वतंत्र नहीं है बल्कि सब शरीरों का पालन करने वाले हैं, सब जीवों के परम पिता हैं परमात्मा। बड़ा अंतर, वो सबका पालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका विनाश करने वाले हैं, जबकि जीव जो है अपने को भी नहीं जान सकता, ना अपने शरीर को जान पाता है, कुछ ठीक से देख नहीं पाता है, सब बातें सुन भी नहीं पाता है ना, तो बहुत अंतर है। ठीक है, धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की
जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
जय।
श्री राधा पार्षार्थी ललित विशाखा की
जय।
श्री श्री गोंडताय भगवान की
जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।
हरे कृष्णा।